ओम शांति, गुड इवनिंग। इस प्रश्नोत्तर के सत्र में आप सबको स्वागत है। आज बाबा ने कहा, ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान ऊंच है, ज्ञान गुप्त है। ज्ञान से ही बाबा हमें वर्षा देते हैं। तो आइए, आज की पहला प्रश्न, ज्ञान का अर्थ क्या है, हम सुनेंगे डॉक्टर सचिन भाई से।
PhD, पर वो खुद कभी पानी में उतरा नहीं है, तो उसको ज्ञानी कहेंगे क्या? He has done PhD, how to swim, पर पानी में उतरा नहीं, क्योंकि अगर स्विमिंग करने जाऊंगा और डूब गया तो एक रीति से वो भी राइट है। ही इज लॉजिकल कि जब तक मुझे सीखना नहीं आता मैं पानी में नहीं उतरूंगा। ये तर्क कैसा है? हाउ इज द लॉजिक? सही है कि गलत है? वो कहता है कि जब तक मैं पूरा सीख नहीं लूंगा मैं पानी में नहीं उतरूंगा। क्यों? वो तो राइट है एक रीति से, अगर सीखेगा ही नहीं और वैसे उतर जाएगा तो डूब नहीं जाएगा। तो ऊपर से तर्क लॉजिक बहुत ठीक ठाक लगता है, बट सत्य वो नहीं है। ज्ञान अनुभव है, ज्ञान अनुभूति है। दो शब्द है, अनुभव और अनुभूति। इन दोनों में क्या अंतर है? एक है अनुभव और एक है अनुभूति, उसमें भी अंतर है। अनुभव ऊपर है, अनुभूति गहरी है, डीप। डीप अनुभव इज कॉल्ड अनुभूति। तो ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन, ज्ञान अर्थात डीप एक्सपीरियंस, ज्ञान अर्थात जिसको हमने धारण कर लिया है, ज्ञान अर्थात जिसके हम स्वरूप बन गए, एम्बॉडीमेंट, ज्ञान अर्थात जो हमारे आचरण में आ गया है, ज्ञान अर्थात ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस, थियरी ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस। जो सिद्धांत था, जो शब्द थे, वो जीवन बन गया। ज्ञान अर्थात जीवंत जीवन, ज्ञान अर्थात लिविंग एग्जाम्पल। ये किसको पता नहीं है चोरी करना गलत है? वो टेररिस्ट भी जानता है कि हिंसा पाप है। वो टेररिस्ट भी आकर लेक्चर दे सकता है, अहिंसा परमो धर्म। एक सभा थी जिसमें एक व्यक्ति ने लेक्चर दिया नॉनवेज खाने से क्या क्या नुकसान है। बहुत पावरफुल स्पीच, और सबको कन्विंस करा दिया सभा को कि यू शुड नॉट ईट नॉनवेज, कितना वायलेंस है और कैसा राजसिक है और साइंटिफिक बेसिस क्या है। तो सभा में एक युवक बैठा था, यूथ, उसको लगा कि ये इतना अच्छा स्पीच तो करता है पर मैं जानना चाहता हूं ये खुद क्या करता है। तो वो लेक्चर के बाद उस वक्ता का, उस स्पीकर का पीछा करता है, और वो वक्ता, वो स्पीकर लेक्चर के बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर नॉनवेज मंगाता है, एंड ही इज ईटिंग नॉनवेज। तो ये जो युवक रहता है वो उसके पास जाता है, कहता है, अरे आपने अभी तो इतना बड़ा लेक्चर दिया। तो वो कहता है, मैंने लेक्चर में ये थोड़ी ना कहा कि मैं नहीं खाता हूं करके, मैंने तो दूसरों को बताया नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये ज्ञान हुआ? ज्ञान अर्थात जो हम कहते हैं, बताते हैं, वो खुद फॉलो करते हैं। जब ज्ञान ऐसा हो जाए तब उसे ज्ञान कहेंगे। ज्ञान अर्थात मन में स्पष्टता, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डार्कनेस नहीं कि ये करना कि नहीं करना, ये जो इनडिसिसिवनेस है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, अर्थात अज्ञान। ये जो कंफ्यूजन है, पता नहीं, डर, मन में डर है, अर्थात अज्ञान। तो ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात समझ, प्रतीति, अनुभव, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, जीवन, ये वास्तव में ज्ञान की परिभाषा है। इसके अतिरिक्त तो जो कुछ है वो सूचनाएं हैं। हमारे पास सूचनाएं बहुत है, मैं आत्मा हूं, परमधाम की रहने वाली हूं, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, चक्र घूमता है, भगवान आ चुका है, पर इनका अनुभव नहीं है। तो एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है नॉलेज, और उसके भी ऊपर है विजडम। ये तीन स्टेजेस है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, फिर ज्ञान। ये जो बातें बताई अभी सारी ज्ञान से संबंधित, उसके भी ऊपर है विजडम, विवेक। वो ज्ञान इतना स्पष्ट हो गया है, अब ज्ञान की रिफाइंड स्टेज जो है वो है विजडम, जहां पे पूर्ण पता है करूं या नहीं करूं। तो ये ज्ञान की परिभाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन योग के बारे में। तो अभी अभी एक भाई ने पूछा योग का अर्थ क्या है, और मुझे योग करते समय हेडेक आता है तो कैसे योग करना है। और एक प्रश्न उसी का रिलेटेड, योग करते समय मुझे शिव बाबा को देखना है या ब्रह्मा बाबा को देखना है।
तो प्रश्न है योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है। दो दिन पहले सैटरडे मुरली आई थी, जिसमें बाबा ने कहा था याद की यात्रा को ही योग कहा जाता है। सबने सुना ये पॉइंट, अभी अभी मुरली में आया था, याद की यात्रा को ही योग कहा जाता है। तो योग संस्कृत शब्द है, योग अर्थात जोड़, यूनियन। दूसरी दूसरी भाषाओं में भी इस शब्द का प्रयोग है, योग, YOKE, जोड़ना। बाइबल में लिखा है कैरी मी फॉर माई योग इज माइल्ड, मुझे अपने कंधों पर उठाकर चलो, भगवान कह रहा है, फॉर माई योग इज माइल्ड, फॉलो मी, कैरी मी। तो योग अर्थात जोड़, योग अर्थात कनेक्शन, योग अर्थात जुटाओ, मिलना। बाबा ने योग शब्द का प्रयोग एक अलग रीति से किया है। बाबा ने कहा योग अर्थात, योग शब्द प्रयोग ही नहीं करो, पहले कहा तुम्हारे क्या है, याद, याद अर्थात प्रेममयी याद। जैसे मां अपने बेटे को याद करती है, बेटा विदेश में है, तो क्या टाइम रखता है उसका कि अभी मैं उसको याद करूंगी, वो निरंतर उसके मन में गूंज रहा है, निरंतर याद है। वैसे योग का आधार संबंध है। तो पहले बाबा ने परिचय दिया, हमें संबंध पता चला, उसके बाद में योग सहज है। योग शब्द थोड़ा कठिन शब्द है, इसके लिए बेटर शब्द है याद, और उससे भी अच्छा शब्द है यात्रा, चलो यात्रा में जाए। और उससे भी अच्छा एक है कि बाबा की जब बहुत याद आ जाए तो योग कर लेना, तो वो होगा याद। तो योग अर्थात संबंध जुड़ जाए, परंतु ये दैहिक संबंध नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा निराकार है और मैं आत्मा इस तन में हूं। इस तन को भूलकर, तन की चीजों को भूलकर अशरीरी हो जाना और उससे संबंध जोड़ना, इस प्रक्रिया का नाम योग है। एक दूसरा, परमात्मा से प्रेम का नाम योग है। तीसरा, उससे संबंध जोड़ना, उसका नाम योग है। सताने वाली याद, उल्हाने वाली याद, वो भी योग है। कंप्लेंट कर रहे हैं पर उसी के पास तो कर रहे हैं, वो भी योग है। पश्चाताप वाली याद, पर उसी के पास तो कर रहे हैं, वो भी योग है। योग के बहुत सारे प्रकार हैं, निरंतर योग, कभी कभी योग, ऑफिशियल योग, जो टाइमिंग है अमृत वेला नुमा शाम। तो योग अर्थात कनेक्शन, सबसे पहला तो ये प्रश्न था। दूसरा क्या पूछा था आपने कि हेडेक आता है योग करते समय, जब किसी माँ अपने बेटे को याद करती है उसको हेडेक होता है क्या? कि होता है, जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को याद करता है तो उसको हेडेक होता है क्या? हेडेक हो रहा है अर्थात संबंध जोड़ा नहीं है, हेडेक हो रहा है अर्थात एकदम एकाग्र होने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेस है, टेंशन है। योग टेंशन का विषय बन गया है, क्योंकि सबने ऐसा ऐसा कहा ज्वालामुखी योग, बीज रूप स्थिति, एकदम शरीर भूल जाए और हमको तो शरीर ही हिलते रहता है, कभी इधर खुजली कभी इधर खुजली, कभी हाथ हिलता है कभी पैर हिलता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, कभी इधर ध्यान कभी उधर ध्यान। वास्तव में सिर दर्द हो रहा है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, कोई शारीरिक कारण हो सकते हैं, कोई बीमारी की वजह से हो सकते हैं, नींद कम हुई है उसके वजह से हो सकते हैं, ओवर एग्जर्शन कर रहे हैं उसके वजह से हो सकते हैं हेडेक, या फिर योग की जो विधि है वो कहीं ना कहीं गलत है। प्रेम कम है, संबंध कम है, विधि कम है, इसलिए सिर भारी होता है। जैसे एक मंदिर है जहां पर एक पुजारी रोज पूजा करता है और भगवान के सामने आरती गाता है भगवान को प्रसन्न करने, देखता है एक छोटा सा बच्चा रोज आके बैठता है और वो भी कुछ आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा है, तो उस पुजारी को लगता है मैं तो विधिवत शास्त्रोक्त आरती गाता हूं, भगवान की वंदना करता हूं, ये छोटा सा बच्चा क्या करता होगा, इसको क्या आता है, इसको किसने सिखाई आरती, और रोज दिखता है वो। उस बच्चे को एक बार पूछता है तुम कौन सी आरती करते हो, तुम कौन सी प्रार्थना करते हो, क्या मांगते हो भगवान से, क्या बात करते हो, तो वो क्या करता है कि मुझे तो बात करना ही नहीं आता, मुझे ABCD आती है, यहां आता हूं और ABCDEFG Z तक बोल देता हूं और भगवान से कहता हूं इसमें से जो प्रार्थना बनानी है तुमको बना लो। तो भगवान को अब कौन ज्यादा पसंद आएगा, वो जो रोज ओम जय जगदीश हरे वही रटी रटाई प्रार्थना कितने दिनों से कर रहा है, उसमें कोई भाव ही नहीं है, अब सब रटा रटाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हुलो को उजागर, प्रार्थना पूरी हुई चलो, सब तोता रटन, पैरट लाइक रीडिंग। भगवान को यह पसंद नहीं है, प्रेम पसंद है। तो हेडेक हो रहा है अर्थात प्रेम को बढ़ाओ, हेडेक हो रहा है अर्थात थोड़ा शारीरिक इलाज करो, हेडेक हो रहा है अर्थात टू मच एक्सर्शन, हेडेक हो रहा है अर्थात लाइफस्टाइल को थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम का समय भी निकालना पड़ेगा, हेडेक हो रहा है अर्थात संबंध जो जोड़ा है थोड़ा कम शक्तिशाली जोड़ा है उसको बढ़ाओ, हेडेक हो रहा है अर्थात ज्ञान की कमी, ज्ञान को बढ़ाओ, योग की विधि सीखो, कॉमेंट्री के साथ योग करो, कॉमेंट्रीज अवेलेबल है, कॉमेंट्री लगाओ और कुछ समय केवल कॉमेंट्री सुनते हुए योग करो, फिर धीरे धीरे सीखो और फिर अपने आप करो। हेडेक हो रहा है चलते फिरते योग करो, घूमते फिरते। तो ये एक प्रश्न। अगला प्रश्न था ब्रह्मा को देखे या तो किसको देखेंगे बोलो, और ब्रह्मा ब्रह्मा को छोड़ देंगे तो किसको देखेंगे, ब्रह्मा को, और शिव बाबा को छोड़ देंगे तो देहधारी में फंसना है। मुरलियों में दोनों ही चीजें आती है, मुरली में बहुत विरोधाभास आता है कभी कभी, पर बाबा जो कहता है उसमें विरोध है पर उसमें खुद में कोई विरोध नहीं है। माउंट में एक मंदिर है लहरी बाबा, लहरें आती रहती है बाबा की, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी बोलता है तुम्हें आवाज से परे जाना, गीत कविता संगीत में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा, और कभी कहता है उदास हो जाओ तो गीत बजाओ, रिकॉर्ड रहने चाहिए तुम्हारे पास अच्छे अच्छे। एक बार डबल विदेशियों से बाबा ने कहा था, यदि उदास हो जाओ बाथरूम में जाके डांस करो, बड़ा प्रसिद्ध वीडियो है बाप दादा का 3 मिनट का, उदास हो जाओ तो क्या करो, बाथरूम में जाके डांस करो। उसी तरह कई बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। बाप कहते हैं बिना ब्रह्मा से कनेक्शन जोड़े शिव से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। एक दूसरी मुरली, यदि ब्रह्मा को याद करोगे तो नरक में जाओगे, खाक हाथ में आएगा तुम्हारे, याद तुमको शिव बाबा को करना है, देहदारी में फंसना नहीं है। ये भी है, हाँ ये दूसरी बात है, वो कह कौन रहा है, शिव बाबा या ब्रह्मा खुद कह रहा है अपने बारे में, ये दूसरा प्रश्न है, परंतु दोनों चीजें मुरलियों में आती है। इसको याद करना है, उसको याद करना है, याद तो निराकार को ही करना है, परंतु वो निराकार इस साकार में बैठा है, और पूरा संगम युग में एक ही चुना हुआ रथ है ब्रह्मा, ब्रह्मा के अतिरिक्त और कोई रथ नहीं है, शिव का एक ही बैल। ब्रह्मा बाबा आदर्श है, उनके जीवन से सीखना है, क्योंकि शिव की जो शिक्षाएं है सर्वप्रथम उन्होंने अपने जीवन में साकार करके दिखाई, तो उनका जीवन आदर्श जीवन है। इसलिए नहीं कि उनके तन में भगवान आया था, उनका अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ था। ब्रह्मा बाबा के अंतिम 6 मास में बाबा के वाक्य थे, बाप इस तन में ऐसे रहता है जैसे यहां है ही नहीं। लोगों को लगा ये शिव बाबा बोल रहा है, बाप इस तन में ऐसा रहता है जैसे है ही नहीं, परंतु वो शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा के अनुभव बोल रहे थे। इसलिए एक आदर्श है, और याद तो निराकार को ही करना है, परंतु वो इस तन में आया है, इसलिए इतना वो उसके जैसा हो गया है कि बाप और दादा नाम हो गया, तो बाप और दादा।
और एक प्रश्न है कि रात को सोते समय हम कितना भी ट्राई करेंगे तो नींद नहीं आता है, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो तुरंत नींद आता है।
तो रात को सोने से पहले योग करो तो नींद आ जाएगी, अच्छा है ना। एक तो प्रश्न है, दूसरा उत्तर है, एक है डिसीज, दूसरी ट्रीटमेंट। अनिद्रा बहुत बड़ी समस्या है, सारे विश्व भर में 50% लोगों को नींद ही नहीं आती रात में, उससे भी कई गुना ज्यादा हो गया होगा अभी तो, ये बहुत पुराना आंकड़ा है। तो सोने को जाते हैं और नींद नहीं आती है, रात रात भर छत को देखते रहते हैं, रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने, आनंद ने एक बार महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप जब सोते हो एक ही करवट पर सोते हो, रात को जिस करवट पे हो सुबह देखता हूं उसी करवट पे हो, क्या आप रात में भी जागते हो? क्योंकि हम लोग तो सोते हैं इस तरफ और उठते पता नहीं किस तरफ से, इधर से सोते मुंह, उधर से मुंह, उठने के बाद गोल गोल घूम जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी इधर हाथ कभी उधर हाथ। तो वो पूछता है ये क्या है, आप ऐसे सोते हो और सुबह उठ के देखता हूं तो उसी करवट पे हो, रहस्य क्या है, जागते रहते हो क्या रात भर? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे करवट लेने की जरूरत ही नहीं, करवटे तो वो लेते हैं जिनका मन अशांत है, जितना जो अशांत उतना वो करवटे बदलते रहेगा, टॉसिंग ऑन द बेड। तो नींद नहीं आ रही है, पहले तो मेडिकल कारण हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों में इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आ रही है डिप्रेशन हो सकता है, नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस टेंशन पैनिक अटैक्स हो सकता है, नींद नहीं आ रही है उसके कई दर्द वाले कारण भी होते हैं, कहीं दर्द हो रहा है शरीर में, नींद नहीं आ रही है क्योंकि दिन में ही बहुत सो लिया, दिन में 5 घंटा सो लिया, आप कहां से नींद आएगी, 3 घंटा सो लिया आप कहां से नींद आएगी। नींद न आने के पहले कारण ढूंढने कि नींद मुझे क्यों नहीं आ रही है, साइकोलॉजिकल रीजंस, फिजिकल रीजंस, और फिर उसके बाद कुछ दूसरे कारण भी है। नींद नहीं आ रही है, शायद सोने की विधि गलत है। नींद नहीं आ रही है, डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन, व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट, नींद नहीं आती है। रात को सोते समय अगर कोई आ जाए और उसे बातें करने लग गए तो नींद उड़ जाएगी। रात को सोते समय इंटरनेट पे बैठ जाए और कोई सीरियल ही देखता रहे, पहले नींद आ रही थी पर सीरियल देखते देखते नींद उड़ गई, फिर बाद में नींद नहीं आई। एटलीस्ट हाफ आवर गो ऑफलाइन बिफोर स्लीप, सोने से पहले। जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है रात में, कोई कॉल आने वाला नहीं है, वो मोबाइल को दूर कर दे, शरीर से भी दूर कर दे, आधा घंटा बंद। कई लोग बिल्कुल वहीं रखते हैं, उठते बराबर सबसे पहला काम क्या क्या आया, तो डिजिटल वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा कारण है। हाउ टू गेट साउंड स्लीप, उसकी बहुत सारी विधियां है, कैसे उस कमरे को शांत बनाया जाए, लाइट कम कर दिया जाए, डिजिटल ऑक्यूपेशन थोड़ा सा दूर, इंटरेक्शन थोड़े कम, तैयार करना है। स्लीप जो है ना बहुत रिचुअल है, स्लीप हाइजीन जिसको कहते हैं, स्लीप हाइजीन। और दिन भर में अच्छी दिनचर्या रही, योग युक्त दिनचर्या रही, अपने आप नींद आएगी। पर दिनचर्या में बहुत सारे विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, कुकर्म हुए, दुख दिए, किसी के साथ झगड़ा हुआ, कहां से नींद आएगी रात में, वही याद आते रहेगा। श्रीमत तोड़ी, वही याद आते रहेगा। या फिर कोई विकार के वश है तो भी नींद नहीं आती। तो सबसे पहला काम तो यह करना है, नींद नहीं आ रही है उसके कारण ढूंढने, एक। दूसरा, नींद अच्छी आने के लिए शारीरिक व्यायाम चाहिए, शारीरिक एफर्ट्स चाहिए सारे दिन भर, कि व्यक्ति इतना थक जाए कि लेटते ही नींद आ जाए। हमारे पास एक पेशेंट थे, उसको इतनी फास्ट नींद आती थी, बाप रे, हमने आज तक कभी देखा नहीं इतना। अभी अभी आए, हाथ धोया और लेट गए और पानी टपक रहा है हाथ से और सो गए, अभी हाथ पहुंचे भी नहीं, इतना एक सेकेंड में नींद, बाप रे। अभी भी है भाई साहब, मधुबन में ही रहते, इतनी सेकेंड में नींद, हाथ अभी धोए पोछे भी नहीं, पानी टपक रहा है और नींद, एक सेकंड। नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 30 सेकंड के अंदर नींद आ जाती है, 30 सेकंड्स। 4 ही घंटा सोता हूं पर लेटते ही नींद आ जाती है तुरंत, दिन में नहीं सोता हूं। तो कुछ तो दिन भर में व्यस्त रहे, कुछ चिंतन करे ज्ञान का, या मन में ज्ञान का चिंतन चालू रहे, सोने से पहले भोजन थोड़ा पहले हो जाए, थोड़ा सा डिस्कशन करे ज्ञान का, थोड़ी अव्यक्त वाणी पढ़े, थोड़ा योग में करे, बाबा को चाट दे, गुड नाइट करे, और वो जो बेड है, बेड, ये बेड है हमारा, यहां पर 7 पहरेदार खड़े करने हैं, मैं यहां सिर, यहां मेरा शरीर, एक पहरेदार यहां पर सिर के पास, एक इधर, एक दो बीच में और यह दो इधर, 7 सोमान तैयार करने हैं अपने रात को सोते समय। जैसे वो पावरफुल सोमान होना चाहिए, जैसे मैं ब्रह्मलोक की निवासी आत्मा हूं, यहां की हुई नहीं, यहां का काम पूरा हुआ, मैं आत्मा यहां से निकलकर परमधाम में चली गई, गाड़ी गैरेज में, ड्राइवर ऊपर, मैं अनासक्त योगी हूं, कोई लेना देना नहीं, सबसे अनासक्त, सबसे डिटैच, मैं ऊपर, दूसरा समान यहां खड़ा, मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं निर्मोही हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं, मैं लगाव मुक्त हूं, मैं निर्विघ्न हूं, ऐसे समान अपना जो बेड है उसके वाइब्रेशंस पावरफुल बनाने हैं, क्योंकि बेड पर ही विकार के भी संकल्प आ सकते हैं और स्वप्न भी आ सकते हैं, उस बेड को ही वाइब्रेशन देने हैं, जैसे कि बहुत ही प्रार्थना पूर्ण कोई कर्म किया जा रहा है, जैसे कोई पूजा कोई भक्त करता है, ऐसी नींद बहुत अच्छी चीज है। तो अपने बेड पर ऐसे पहरेदार खड़े कर देना सोते समय, तो नींद अच्छी आएगी। तो नींद नहीं आती है, यह प्रश्न है, और क्या प्रश्न था जुड़ा हुआ? योग में नींद, अच्छा योग में नींद आती है, यह दूसरा प्रश्न था। बैठते ही नींद, भयंकर नींद, प्रकोप, महाप्रलयंकारी नींद, बैठे और कोई इधर गिरता है, कोई उधर, कोई यहां तो कोई यहां, कोई नमाज नीचे। उस दिन भी सुनाया था एक भाई शांति स्तंभ पर बैठकर पूरा नीचे तक झुक गया। उसको भाई क्या कर रहे हो, सकाश धरती को। तो योग में यदि नींद आती है, कारण है प्रेम की कमी, संबंध की कमी, ज्ञान की कमी, विधि की कमी। नींद आती है तो शायद रात में नींद नहीं हुई है, साउंड स्लीप, सोए तो है पर उठे तो थकान। नींद आती है तो जरूर कोई शारीरिक बीमारी है, नींद आती है तो जरूर कोई टैबलेट्स चालू है, कोई बीमारी की, डिप्रेशन की, जिसका असर चल रहा है, डॉक्टर से मिलो, कहो कि डोज कम करे या टाइमिंग कम करे, रात को 10 बजे लेने की बजाय 7 बजे ले लो, ताकि दूसरे दिन अमृत वेला नींद नहीं आई। नींद योग में आती है क्योंकि रात में भोजन ही इतना जबरदस्त, भरपेट। योग के लिए दो चीजें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट। गरिष्ठ भोजन तो नींद तो आएगी दूसरे दिन, तो भोजन। नींद आने का योग में कारण ढूंढने, क्यों मुझे नींद आती है, ये सब करने के बाद भी नींद आती है तो चलता फिरता योग करो। नींद आती है तो वीडियो देखो बाप दादा का, नींद आती है तो उठकर मुरली पढ़ो, नींद आती है तो पहले एक्सरसाइज करो उठते ही, थोड़ी सी, थोड़ा प्राणायाम, अनुलोम विलोम वगैरह वगैरह, थोड़ा ओम की ध्वनि करो, फिर योग में बैठो। नींद आती है अपने बिस्तर को छोड़ो, बिस्तर पर योग नहीं करना है, वहां से छोड़ो, दूसरी जगह बैठो, वहां पर योग करो, एक बाबा का कमरा तैयार करो, नहीं है बाबा का कमरा, एक क्या कहते हैं, आसन ले लो दुकान से, आसन पर बैठकर योग, बेड पर योग नहीं करना है, उससे उठ जाना है, वहां नींद के वाइब्रेशन से, चलते फिरते बालकनी, टेरेस, कहीं पर भी कुछ भी करना है पर नींद ना आए, बस ये लक्ष्य रखना है। और बाबा ने तो मुरली में क्या कहा, अगर नींद आती है तो आंखों में तेल डाल दो।
अभी अभी ट्रैफिक कंट्रोल हुआ तो कभी एक घंटे में एक मिनट का होता है, ट्रैफिक कंट्रोल दो मिनट का होता है, तो हम योग लगाने के पहले ही वो गीत भी समाप्त हो जाता है।
ट्रैफिक कंट्रोल वास्तव में एक ट्रैफिक कंट्रोल तो ऑफिशियल है जो यज्ञ की तरफ से है, और आजकल कई सारे जगह पर मधुबन में एक एक घंटे में बजता है। हम यही कहेंगे कि अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करें, जो लोग बहुत व्यस्त है जिनकी दिनचर्या। दूसरी चीज, ट्रैफिक कंट्रोल में 3 मिनट अगर है तो उसको हम थोड़ा सा डिवाइड करें, फर्स्ट 1 मिनट, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट। फर्स्ट 1 मिनट सोल कॉन्शियस स्टेज, सेकेंड मिनट मैं आत्मा, मुझसे किरणें फैल रही है, पहला मैं आत्मा हूं फिर किरणें फैल रही है, थर्ड स्टेज शिव बाबा से कनेक्शन, ये एक क्लासिफिकेशन बताया। ऐसा बहुत सारा कुछ उसमें कर सकते हैं, कोई भी एक समान लेना और उसमें स्थित हो जाना, या फिर मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर सीधा परम धाम में हूं, यहां से पूर्ण डिटैच हो गई, 1 मिनट वो परम धाम में शिव बाबा के नीचे, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट किरणें फैल रही है, 3 मिनट्स को 3 अभ्यासों में डिवाइड करना है एवरी ट्रैफिक कंट्रोल, और वो अभ्यास एकदम आंतरिक होगा, ऊपर से किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, हमारी इंटर प्रैक्टिस, नए नए अभ्यास करना है ट्रैफिक कंट्रोल में। ट्रैफिक कंट्रोल का लक्ष्य किसी को दिखावा नहीं है। जैसे हम देखते हैं शांतिवन में इतने ज्यादा योगी बन जाते हैं सब, भयंकर रास्ते के बीच में खड़े हैं और ट्रैफिक कंट्रोल बज गया वहीं खड़े रहेंगे, उधर से कार आ रही है उधर से हॉर्न दे रहे, वो कहता है उसको ट्रैफिक कंट्रोल चुप चुप, भोजन करते करते ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज गया, भोजन यहां तक आया था ट्रैफिक कंट्रोल रुक गए और दूसरों को देख रहे कौन क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है। एक भाई ने तो ट्रैफिक कंट्रोल अभी गुलाब जामुन लिया ही था अंदर डाल दिया और ट्रैफिक कंट्रोल बज गया, ऐसे ही रुक गया। तो ये ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं चाहिए, दिखावे वाला ढोंग वाला ट्रैफिक कंट्रोल तो अंदर की चीज है, ऐसा जरूरी नहीं भी कि उसमें रुक ही जाना है, चलते चलते भी ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। कि ट्रैफिक कंट्रोल का अर्थात विचारों से संबंध है, शरीर से संबंध नहीं है उसका ज्यादा। तो ट्रैफिक कंट्रोल की प्लानिंग, ट्रैफिक कंट्रोल में डिवीजन, ट्रैफिक कंट्रोल में छोटे छोटे योग के क्या अभ्यास किया जाए उसकी खोज करनी है।
विकर्ण विनाश हुआ है योग में तो हमें कैसे पता चले कि कितने जन्मों को हुआ,
कितने जन्मों का, एक का हुआ है, दो का हुआ है, चार का बाकी है, पांच का बाकी है, ऐसे स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। विकर्म विनाश होने की निशानी, अचानक हल्कापन आ जाना, जो भारीपन था वो चला गया। विकर्म विनाश होने की निशानी, जीवन में जो विघ्न थे अचानक हट गए। विकर्म विनाश होने की निशानी, योग अपने आप पावरफुल लगने लगा। विकर्म विनाश की निशानी, स्वतः आत्माभिमानी स्थिति। विकर्म विनाश की निशानी, विकारों से एकदम वैराग आ गया। अभी तक कोशिश करते थे नहीं देखना है नहीं देखना है नहीं जाना है, अभी इच्छा ही खत्म हो गई, जीरो। विकर्म विनाश की निशानी, एक्सट्रीम प्यूरिटी का अनुभव, टू मच प्यूरिटी का अनुभव। माइंड पावरफुल, विकर्म विनाश की निशानी, आत्मा इंस्पायर्ड सोल बन जाती है। असंख्य आत्माओं को राह दिखाने वाली बन जाती है। तो विकर्म जब जब विनाश होंगे और ज्यादा ज्यादा विनाश होंगे, एक सबसे पहला अनुभव होगा हल्कापन, बहुत अच्छा लगने लगेगा, खुशी आ जाएगी। जो दुख था उदासी थी वो मिट जाएगी, जो दर्द था पीड़ा थी पेन था खत्म हो जाएगा, जो पश्चाताप था गिल्ट कॉन्शियसनेस थी कि मैंने पाप किया है मैंने पाप किया है मैंने पाप किया है, मेरे हाथों से गलत हो गया, मैंने बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया है, ये भाव हट जाएगा अपने आप। तो जब ऐसा होने लगे तब समझना विकर्म विनाश। और एक दूसरी बात, जब महान आत्माओं का संग मिले बार बार तो समझना विकर्म विनाश हो रहे। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, परमात्मा कृपा बरस रही है इसलिए महान आत्माओं, ये ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा महान है, बार बार महान आत्माओं का संग मिलना अर्थात विकर्म विनाश हो रहे।
हम तो योग कर रहे हैं लेकिन बाबा कहते हैं आप जब भी कहीं भी पब्लिक प्रोग्राम हो या किसी से मिलते हो तो उसको भी अनुभव कराना है, मेडिटेशन का या ज्ञान का इम्पोर्टेंस उनको सुना के। एक सेकंड में या एक मिनट में किसी से मिलते हैं या पांच मिनट में, कैसे अनुभव कराए?
प्रश्न क्या है?
वही, किसी को, नए लोगों को कैसे एक्सपीरियंस,
कैसे अनुभव कराए?
ज्ञान भी देना है या योग भी एक्सपीरियंस कराना
है? ज्ञान कम सुनाना है, अनुभव ज्यादा कराना है। ज्ञान कम, कोई आए और उसको पकड़ के पूरा सात दिन का ज्ञान एक घंटे में नहीं सुना देना है। पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा शिकार बाद में आएगा कि नहीं आएगा, उसका जो हो, हमें तो राजा बनना है, प्रजा तैयार करनी है। कहां जा रहा है, ए प्रजा आओ पकड़ो उसको और सुनाओ, पंप करो उसके अंदर ज्ञान। वो पेट्रोल पंप में यहां लगाते हैं ना, वैसे दिमाग में यहां पंप और पंप। जब तक बी के नहीं बन जाता छोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, बड़ा बेरहमी से रहम करते हैं ब्राह्मण। ट्रेन में तो बात मत पूछो, अरे अरे ऐसा अत्याचार, भयंकर अत्याचार करते हैं। बेचारी निर्बल आत्माएं, आत्मा के चैप्टर से चालू किया, सीधा ब्रह्मचर्य की चर्चा चालू है ट्रेन में। बेचारे ऐसे भाग जाते हैं कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। फिर शांतिवन में एक भाई है, उसका लौकिक भाई आया था मिलने। जो आता था, जो मिलता था, पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाता था उसको शांतिवन में। पकड़ पकड़ के ज्ञान, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। दो दिन के बाद वो सुबह सुबह शांतिवन के बाहर जाता था और बाहर ही घूमते रहता था शाम तक, क्योंकि ये लोग पकड़ लेंगे। बीकेस बड़े खतरनाक है, छोड़ते नहीं, एक बार पकड़ लिया तो पूरा ज्ञान सुना के ही दम लेते हैं। तो ज्ञान सुनाना केवल शब्दों से नहीं होता है, हमारे वाइब्रेशंस भी तो कुछ है। यहां से लोग शिविर में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में। उनको कुछ याद नहीं किस स्पीकर ने क्या बोला था। उनको क्या याद है, जिस भाई ने भोजन खिलाया था किचन में, वो याद है। उनको क्या याद है, कितनी अच्छे से सफाई कर रहा था कोई भाई अपने डिपार्टमेंट की, वो याद है। शांतिवन में एक पुलिस कमिश्नर आए थे, एक भाई मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में रुके थे, उनको इधर आना था ट्रांसपोर्ट में, शांतिवन में जाना था, कुछ था नहीं। वो भाई ने अपने साइकिल के सामने वाले दंडे पे बिठाया, कमिश्नर साहब को लेके आया। कमिश्नर इतने खुश बहुत खुश हो गए, वाह ऐसा तो कहां मिलेगा। सब तो डरते हैं उनसे, साफ साफ कहते हैं गाड़ी में बैठो, ये करो वो करो। ये भाई को क्या पता, बिठाया, चलो बैठो मैं ले जाता हूं, और लेके गया। वो कभी नहीं भूला उसको। तो लोगों को खाली ज्ञान नहीं सुनाना है, ज्ञान से ज्यादा दूसरी चीजें है। एक माता ज्ञान सरोवर में समझा रही थी, तो एक बहुत बड़े कहां के डायरेक्टर आए थे कंपनी के, तो उस माता ने उसको समझाया प्रदर्शनी, तो उन्होंने अपने डाउट व्यक्त किए। तो माता ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा, ऐसे अनपढ़ माता थी। उसने कहा देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी नहीं समझता, ये भगवान कह रहा है। इतनी भी बुद्धि नहीं है। और वो वहां से गए और कोर्स किया और फिर ज्ञान में और अनुभव सुनाया ऐसा। तो लोग ज्ञान में केवल ये ज्ञान के बातें सुनने से नहीं आता, ये आत्मा ये परमात्मा, ये आत्मा ये परमात्मा, ये चक्र ये वो सेवा करो, प्यार दो। उस दिन कहा ना, दिल का रास्ता कहां से चालू होता है, पेट से, इधर से। तृप्त करो, संतुष्ट करो, अनुभव कराओ। कोर्स भी कराते हैं तो आधा कोर्स सूक्ष्म अवतन में होना चाहिए, आधा शाम को उधर, उस आत्मा को इमर्ज करके भगवान का अनुभव कराओ। और कोर्स कराते समय आत्मा का चैप्टर है स्टॉप योग, मैं आत्मा हूं। परमात्मा का चैप्टर है स्टॉप परमात्मा का अनुभव, सीधा पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं सुनना है। ज्ञान वो लोग बहुत सुने हैं, हमसे ज्यादा जानते होंगे शायद, संसार की बातों का भी ज्ञान है उनके पास, हमारे पास तो बस इतना है। तो अनुभव कराना है आत्माओं को।
बाबा कहते हैं सकाश देना है, जब नेचुरल कलामिटीज होती है, ऐसा कोई दुर्घटना होती है, तो हमारी स्थिति कैसे रखे उन दुखी अशांत आत्माओं को वाइब्रेशंस देना।
सकाश कैसे दे दुखी अशांत आत्माओं को, कि स्थिति कैसे रखे? दोनों प्रश्न है या एक प्रश्न है?
दोनों, स्थिति से फिर प्रकाश।
सकाश देने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे ऊंची सेवा है, पर सकाश के लिए माइंड की स्टेज बहुत ऊंची चाहिए। बाबा के महावाक्य है, बिना बेहद के वैराग्य के तुम सकाश देने की सेवा नहीं कर सकते। कोई कहता है मैं सकाश देता हूं, नहीं पहुंचेगी सकाश। मां सोचती है मैं अपनी बेटी को सकाश देती हूं, वो ज्ञान में नहीं चलती, ज्ञान में आ जाए, और रोज सकाश देती हूं उसकी, नहीं जाएगी। मां सोचती है अपने बेटे को सकाश दू, बच्चा सोचता है अपने मां बाप को सकाश दू, पत्नी सोचती है पति को सकाश दू। वैराग नहीं है, बीच में मोह है, आसक्ति है, लगाव है, सेल्फिशनेस है, सकाश जाएगी नहीं। जब तक मोह नहीं टूटता सकाश नहीं पहुंच सकती। एक अव्यक्त वाणी में आया था, माता है बाबा से कहती है बाबा हमारे पति का ताला खोलो। बाबा कहते हैं तुमने कभी यह कहा कि भारत की बुद्धि का ताला खोलो, पड़ोसी की बुद्धि का ताला खोलो, यह कहा कभी? मेरा पति, मेरे बच्चे, मैं, बस इतना ही, सकाश नहीं जाएगी। सकाश के लिए वैराग चाहिए। जिसको सकाश देनी है नष्टो मोहा, बाकियों को सकाश दे रहे, बीच में उसको इमर्ज करो, उसको भी सकाश दे दो, काम पूरा, आगे बढ़ो, दूसरों को सकाश पकड़ के एक ही आत्मा को सकाश देना, जिसमें मोह है, जिसमें लगाव है, और जिससे हमारा फायदा होने वाला है, यह सकाश नहीं जाती है। सकाश अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, विश्व कल्याण हेतु, तो उसके लिए स्थिति शक्तिशाली। और सकाश वही आत्मा दे सकती है जिसने हर प्रकार की सेवा की है यज्ञ में, झाड़ू लगाने से लेके, पोछा लगाने से लेके, भोजन बनाने से लेके, कर्मणा मनसा वाचा धन तन मन सब कुछ लगा दिया है। ही इज क्वालिफाइड टू डू मनसा सेवा। कोई कहे कि हम बाकी सेवा हमको मत दो, हम तो मनसा सेवा करेंगे, ये किचन बिचन बाकी स्थूल सेवा हमको नहीं चाहिए, हम तो योग लगाएंगे बस, नहीं होगा। हड्डी हड्डी यहां देनी होगी तो मनसा सेवा देने के अधिकारी होंगे। और मनसा सेवा के लिए कहा ज्ञान का गहन चिंतन चाहिए, योग का अभ्यास चाहिए, विश्व कल्याण की बहुत ज्यादा भावना, तीव्रता, रहम दिल का भाव कि संसार की आत्माएं दुखी है, तड़प रही है, मैं क्या करूं उनके लिए, क्या मैं कर सकता हूं उनके लिए, उनका दुख देखा नहीं जाता। जो अनलिमिटेड में रहता है, बेहद में, वही सकाश दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, आई एम नॉट बॉर्न फॉर वन पर्सन, वन फैमिली, वन सोसाइटी, वन स्टेट, वन नेशन, बट फॉर द वर्ल्ड। तो अनलिमिटेड भावनाएं।
साक्षात्कार के बारे में कुछ रोशनी डालो।
साक्षात्कार, ब्राह्मण आत्माएं पांच प्रकार के साक्षात्कार करना चाहती है, ये हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। बहुत है वैसे टाइप, तो पांच मुख्य। पहला, आत्मा दिख जाए बस, एक बार दिखा दो बस, कैसी दिखती है चमकता हुआ सितारा। बाकी सबको कितने साक्षात्कार होते हैं, इसको इधर लाइट उधर लाइट, टम टम टिम टिम, हमको कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ तो दिखा दो। दूसरा, परमात्मा का साक्षात्कार। एक भाई ने शांतिवन, ओम शांति भवन में अव्यक्त बाप दादा से सीधा पूछा था, बाबा मुझे आपका साक्षात्कार करना है परमात्मा का। ओम शांति भवन में एक भाई ने स्टेज पर जाकर बाबा से पूछा था, बाबा मुझे आपका साक्षात्कार करना है। बाबा ने कहा था, बाप का साक्षात्कार करना चाहते हो या साक्षात बाप बनना चाहते हो? तो दूसरा साक्षात्कार चाहते, परमात्मा दिख जाए बस। तीसरा, परमधाम दिख जाए तो योग लगाना आसान हो जाएगा, हमको भी तो देखना है लाल प्रकाश की दुनिया कैसी दिखती है। चौथा, स्वर्ग, स्वर्ग दिख जाए, देवी देवता कैसे झूम रहे, घूम रहे, क्या क्या कर रहे हैं। और पांचवा, विनाश, विनाश एक बार दिखा दो, देखना फिर कैसे वैराग आता है। ब्रह्मा को तो वैसे ही आया है ना, पहले थोड़ी था। हमको भी वैराग, हमको भी थोड़ा दिखा दो तो हमको भी वैराग आ जाएगा। पांच मुख्य साक्षात्कार है, कुछ और है, हमारे पूर्व जन्म क्या कहते हैं वो बता दो जरा। ये साक्षात्कार। अब प्रश्न है, साक्षात्कार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मम्मा को कोई साक्षात्कार वगैरह कुछ नहीं हुआ? साक्षात्कार में बड़ी माया है। बाबा कितनी बार मुरलियों में कहते हैं, देखो ये बच्ची बैठी है, ये ध्यान में है। अब बाबा ये टाइम वेस्ट कर रही है ना, मुरलियों में आता है ये, क्योंकि याद तो कर नहीं रही है। हमारे पास एक बहन है, वो कहती थी कि मुझे ना 4 बजे एक बार ऐसा हुआ, स्वप्न आया और स्वप्न में मैं बाबा को देख रही हूं। अब प्रश्न है, अमृत वेला उठूं या उसी में चालू रखूं? अब बताओ क्या करूं। स्वप्न में बाबा दिख रहा है, 4 बज गए, दिख रहे आंख खुली, पर स्वप्न भी ऐसे लग रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? कंटिन्यू विद द ड्रीम और गेट अप एंड डिस्टर्ब द ड्रीम? बाबा बिल्कुल एकदम समीप, साथ साथ है स्वप्न में। अरे स्वप्न में बाबा दिखा तो क्या विकर्म विनाश होंगे क्या उससे? साक्षात्कार हो गया, किसी को शिव बाबा दिख गया, परमात्मा दिख गया, विनाश दिख गया, स्वर्ग में पहुंच गया, सब हो गया, पूर्व जन्म दिख गए सारे, दिख गया पूर्व जन्म में बहुत ही महान आत्मा थी कोई। रामानंद तीर्थ, आगे क्या करना है? उससे अभी का क्या संबंध? होंगे हम सभी महान, पर अभी क्या? तो साक्षात्कार की कई मुरलियों में आता है, ध्यान दीदार की आश नहीं करो। और इसमें बहुत माया भी है दूसरे रीति से, और इसलिए ये पार्टी बंद करा दिया फिर बाबा ने। एक बार ऐसा ही हुआ, कहीं किसी सेंटर पर एक बहन थी, वो ध्यान में जाती थी। एक बार एक पत्रकार भेष बदलकर सेंटर पर आया और उसने कहा, मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया है, उसके लिए भोग भोग लगाइए, मैं भोग लगाना चाहता हूं। और उसने भोग लगाया और बहन जी ने संदेश भी लाया उसकी पत्नी के लिए, जो कि जिंदा थी और बहुत न्यूज़पेपर में आया था वो। उसने बहुत ग्लानी की थी, फिर ये सब ढोंग है। तो बाबा ने कहा, सीआईडी ऑफिसर आएंगे तुम्हारी टेस्ट करने। तो ध्यान दीदार साक्षात्कार, इससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते। हां अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कुछ नहीं, तो इसके पीछे नहीं पड़ना है। लास्ट क्वेश्चन,
सेल्फ सेटिस्फेक्शन और लौकिक अलौकिक सभी परिवार को सेटिस्फाई करना है और बाबा को सेटिस्फेक्शन,
संतुष्टता का सर्टिफिकेट।
कैसे?
सर्टिफिकेट शब्द बाबा ने किसी भी दिव्य गुण के साथ नहीं जोड़ा है। प्यूरिटी का सर्टिफिकेट नहीं बोला, सहनशीलता का सर्टिफिकेट नहीं बोला, एक्यूरेसी का सर्टिफिकेट नहीं बोला, स्वीटनेस का सर्टिफिकेट नहीं बोला। एक ही गुण है 36 में से, जिसके लिए कहा इसका तुमको सर्टिफिकेट लेना है, कि वो भी कितने? 3, स्वयं स्वयं से, दूसरा बाप से, और तीसरा सबसे कठिन परिवार। बाप ने तो देने को तैयार है, लो तुमने बहुत अच्छी सेवा की और हमने अपने आप को भी दे दिया, पर परिवार वालों ने प्रतिज्ञा कर रखी है हम नहीं देंगे। आप क्या करेंगे बोलो? किसी ने कसम ही खा ले रखी है कि मैं, तुम जो भी करो मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। आप क्या करेंगे? ब्राह्मणों को खुश करना बड़ा कठिन है, इतना जल्दी खुश नहीं होते। बहुत दक्षिणा जब मिलती है ना तो उनको, तब पेट बीट उनका फूलता है, तब उनको जरा ठीक लगता है, अब सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा है, परिवार को संतुष्ट, परिवार की दुआएं, महान आत्माओं की दुआएं, विधि है? हां जी विधि है, स्वयं अंदर से संतुष्टता विधि है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मिला बहुत है विधि है, ये भाग्य है मेरा विधि है, ये मेरे ही हिसाब किताब है, इसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं, मुझे बहुत प्राप्त हुआ। बाबा को धन्यवाद, परिवार को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। किसी से हमारी कोई कंप्लेंट नहीं, किसी की कंप्लेन हमको किसी के पास नहीं करनी, किसी की बात परिवार में फैलानी नहीं है, गॉसिप्स, झरमोई झगमोई। जब ऐसी अवस्था होगी तब परिवार वाले सर्टिफिकेट देंगे। परंतु फिर भी 5% दादी प्रकाशमणि के लिए बाबा ने कहा था कि 5% संतुष्ट नहीं होंगे, वो अपने संस्कारों के कारण। हमने सबको संतुष्ट किया, कुछ लोग हैं जो नहीं हो रहे, पर वो उसमें हमारी भूल नहीं है, वो उनका असंतुष्ट रहने का संस्कार है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो रहे। इसलिए रोज अमृत वेला वरदान लेना है संतोषी मां का, मैं संतुष्ट मणि हूं। मणि कहा है, मणि भी किसी और गुण के लिए यूज नहीं किया है। सर्टिफिकेट और मनी दो शब्द केवल और केवल संतुष्टता के लिए, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, तुम संतुष्ट मणियों का प्रकाश विश्व में फैलता है, इसलिए संतुष्ट भव। ओम शांति।